आशाओं के दीप जला।
कार्यक्रम आशादीप में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रतिदिन के जीवन से जुड़ी बातों और जीवन की आवश्यकताओं पर बाइबल आधारित संदेश प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले कि आप संदेश सुने, आइए कार्यक्रम के आरंभ में यह गीत सुनते हैं।
नया गीत मुझे देना यीशु, नया गीत मुझे देना यीशु। मैं तुझ में डूबा रहना चाहता हूँ, नया गीत मुझे देना यीशु। दाऊद की तरह काश मैं भी बनूं, गीत नया गाकर तुझको सिजदा करूं। दाऊद की तरह काश मैं भी बनूं, गाकर तुझको सिजदा करूं। मैं तेरे ही नाम को ऊंचा करूं, तुझको सिजदा हमेशा करूं। हाँ, नया गीत मुझे देना यीशु, नया गीत मुझे देना यीशु। मैं तुझ में डूबा रहना चाहता हूँ, नया गीत मुझे देना यीशु।
प्रिय श्रोता, यदि आपने पृथ्वी संबंधी विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा तो शायद ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने के लिए प्रकाश का होना कितना जरूरी है, क्योंकि हर एक प्राणी को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए तथा संतान उत्पन्न करने के लिए प्रकाश का रहना बहुत ही जरूरी है, चाहे वह प्राणी जगत हो अथवा वनस्पति जगत। हर एक को किसी न किसी रूप में कमोवेश प्रकाश की जरूरत है, इसके बिना जीवन का अस्तित्व कायम रहना मुश्किल है। हमें यह बात जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि प्रकाश का विचार परमेश्वर ही के मन में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था और उसी की ओर से इसकी सृष्टि भी की गई थी। आदि में परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश यानी ज्योति की रचना की थी। उन्होंने अंधकार और प्रकाश को अलग कर दिया। इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए सबसे पहले हम वचन का एक हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जहां कुछ इस प्रकार से लिखा है। कृपया ध्यान से सुने। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इफिसियों 5:8-13 तक। प्रिय मित्र, पौलुस द्वारा लिखे गए इन वचनों में हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हमें ज्योति की संतान के रूप में प्रकट करते हैं। ये बातें इस बात को प्रमाणित करती हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रहण योग्य हैं। इसे समझाने के लिए सबसे पहले वह एक महत्वपूर्ण बात को स्मरण दिलाता है कि पहले हम सब के सब अंधकार की संतान थे और परमेश्वर की बातों से अनभिज्ञ थे। हमारे मन के अंधकार के कारण ज्योति प्राप्त करने से पहले हम अपने पापमय स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि इफिसियों 4:18-19 पद में मनुष्य के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। प्रिय श्रोता, हमारे लिए यह याद रखना जरूरी है कि हम किस दशा से निकलकर ज्योति में प्रवेश किए हैं, अन्यथा हम घमंड करते रहेंगे। फिर भी जो बातें पहले सच थीं वे अब वर्तमान में सच नहीं हैं, क्योंकि वचन के अनुसार हम प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हम ज्योति के संतान हैं, और चूँकि हम ज्योति की संतान हैं इसलिए ज्योति की संतान की नाई चलें। अब हम 8:10 को जरा मिलाकर पढ़ें। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। क्या आपने इन दोनों पदों का आशय समझा? यानी ज्योति की संतान होने के नाते हमें इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि परमेश्वर को क्या भाता है और वे हमसे किस प्रकार की आशा रखते हैं। इस विचार को हम गंभीरता पूर्वक सोचें। किसी चीज को सिद्ध करने के लिए, और खासकर यदि कोई वचन हो, तो इसे जांचने की जरूरत होती है ताकि जो कुछ हम जांच रहे हैं वह उचित साबित हो सके, और इस बात को निरंतर जांचते रहना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है, और इसके फलस्वरूप हम में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। अतः हमें भी ज्योति की संतान की नाई चलना चाहिए जो हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सत्य के रूप में हमारे जीवन से प्रकट होता रहेगा। प्रिय मित्र, क्या आप ज्योति की संतान की नाई चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या आपके जीवन को देखकर लोग समझ पाते हैं कि आप ज्योति की संतान हैं? यदि नहीं, तो ज्योति के प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दे। बदलाव लाने के लिए उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना का उत्तर आपको एक दिन अवश्य मिल जाएगा।
Yeah.
श्रोताओं, आशादीप कार्यक्रम में हम आपकी परेशानियों एवं समस्याओं का बाइबल आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें अवश्य लिखिए। हम आपके मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप संस्था द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क डाक बाइबल अध्ययन में अपना नामांकन भी करा सकते हैं। तो मित्रों, पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। पता एक बार फिर, आशादीप, पोस्ट बॉक्स नंबर 205, रांची 834001, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए आप फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09-835-983-759। पुनः एक बार 09-835-983-759। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमारी मुलाकात अगले कार्यक्रम में इसी समय इसी मीटर बैंड पर फिर होगी। तब तक के लिए एलिस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।